सारी कहानी बताई। इस सतलोक में हम रहते थे बीरा, और वहां से हम आए हैं, और वहां तक नहीं पहुंचोगे तो यो काल तने नचाए जाएगा। अब तो अच्छी साधना छोटी मोटी दिशी कर रहा, स्वर्ग में रख देगा तुझे, उसके बाद 84 में गदा बनेगा धर्मदास, ये असंग जन्म हो गए तने घूमते ने। अब धर्मदास कहता, भगवान क्या हम ये पाठ करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, कोई भगवान की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या इससे कोई लाभ नहीं? कि लाभ है, लाभ है, लेकिन नहीं भी है। कैसे? जैसे खेत को संवार दिया हल से या ट्रैक्टर से, उसकी खूब संवार दिया उसको, और फिर संवार दे, फिर बा दे उसको, फिर बा, फिर ट्रैक्टर चला दे उसमें, और ये के लाभ जो उसमें बीज बोया नहीं। यदि उसमें बीज नहीं बोया तो बार बार उसके बाने से संवारने से कोई लाभ नहीं। पाठ, आरती, धर्म, दुआ, दुआ माने प्रार्थना, जैसे गायत्री मंत्र आम भक्तजन पढ़ते हैं, या फिर कोई आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, या कोई मंत्र जैसे वेदों के गीता के पढ़ते हैं, इससे ये शरीर रूपी खेत समर जाता है। धार्मिक शास्त्र पढ़ने, संतों के सत्संग सुनने से ये संवर जाएगा, और जो इसमें बीज नहीं बोया तो व्यर्थ जाएगा। पाठ, आरती, धर्म, दुआ से क्या कोई लाभ नहीं है? कितना है? पाठ, आरती, धर्म, दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ, आरती, धर्म, दुआ से खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का पातो है। सत्य नाम बीज जो फल भक्ति का पाता है, काल जीव को उलझाता है, देके उल्टा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। फिर भी क्योंकि ये पुराना रंग है ना जीव का, जल्दी से उतरता नहीं। कहता, भगवान आपकी बात को भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, और गीता जी से मेरा पुराना संबंध है, भगवान कृष्ण से, यानी काफी वर्षों से मैं उनका आसक्त रहा हूं, और वो भी मेरे से बुलाए नहीं जाते। कबीर साहब बोले, तेरी इच्छा भाई, रास्ता तेरे तो बता दिया, अब तूने कुएं में गिरना है हाथ में दीपक लेकर तो पड़ बे सक। कबीर साहब कहते हैं कि कर दीपक कुआ पड़े फिर कहे कि कुशलाता, हाथ में बैटरी ले रहा अंधेरे में नो दिखे सामने कुआ, फिर गिरे उसमें नादा नहीं, तेरी मर्जी पड़ कुएं में, और जा काल के मुंह में जो रोज कहो मैं सब न खाऊं। और तेरे को बता दिया कि 1 लाख ये रोज खावे, किसी का बेटा मरे किसी की बेटी मरे, 1 लाख प्राणी रोज रो के सोते हैं, सोए कड़े रात ने नींद थोड़ी आओ बेचारा ने 1 महीने तय, और तू उसकी पूजा करे जो कहे मैं सारे न खाऊंगा, ठीक है बीरा तेरी मर्जी, नो कहकर फिर अंतर ध्यान हो गए। इतना तो उसके मन में समा गया कि बिल्कुल सही बात बताई भगवान ने, परमात्मा थे ये। और अब उसके बाद ना तो उसकी कोई तीर्थ यात्रा में रुचि रही, ना राम और कृष्ण में रही, क्योंकि गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब तुझे उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तेरी आस्था मारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश में और मेरे में ऐसे रह जाएगी जैसे बड़े तालाब का प्राप्त हो जाने पर, बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाने पर, और छोटी सी तलैया में रह जाती है। इतना ही ऐसे लिख रहा क्या गीता में कि अर्जुन जब तुझे पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, किसी पूरे संत का सही ज्ञान हो जाएगा ना, तब तेरी आस्था इस निम्न सत्र की साधनाओं में ऐसे रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर और छोटी सी तलैया में रह जाती है। ऐसी धर्मदास की आस्था बनेगी कि ना तो ये, नहीं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना व्यर्थ, क्योंकि गीता में लिख रखा, गीता में ऐसे ही लिखा 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि अर्जुन ब्रह्मा का उपासक यानी रजोगुण उपासक वो क्या होगा, कोई संत भी उसने बना लिया मान लीजिए साधक ने, वो कहां जाएगा, वो ना स्वर्ग जाएगा, उसको एकाध मनुष्य शरीर मिल जाएगा और अपनी पूंजी को समाप्त करके फिर 84 में चला जाएगा। और भगवान विष्णु यानी सतोगुण की साधना करने वाला साधक उसमें स्वर्ग जाएगा, उसके बाद फिर 84 में आ जाएगा। ये साधना अच्छी नहीं, और तमोगुण उपासक सीधा नरक में जाएगा यानी शिव उपासक। तो ये बात तो वो समझता था कि लिख तो ऐसा ही रखा है, पर ये मन पापी अभी भी आठ अड़ास बना ही रहा था। जब सामने से साहेब नजर नहीं आए, इतने बुरी तरह रो रहा है जैसे निर्धन आत्मा आदमी की खेती लुट जाया करे। और वहां से रोने लगा था, ना वृंदावन गया ना बरसाने में गया। बरसाने में क्यों जाते हैं साधक, कहते हैं कि बरसाने की राधा थी। और वहां क्या कहते हैं बरसाने के लोग, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते, ना वो जय कृष्ण कहते, ना कृष्ण कृष्ण कहते, ना राम राम कहते, वो कहते हैं राधे राधे। एक दूसरे से मिलते हैं ना, जैसे कोई हम सतसाहिब कहते हैं, अन्य राम राम कहते हैं, वहां ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं राधे राधे। कोई मिलेगा ना चाचा राधे राधे, वो कहेगा बेटा राधे राधे, वो राम राम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि कहते हैं कि बरसाने की राधा थी और वो भगवान कृष्ण से मिलवा देगी हमने। और क्या महिमा गाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, न्यो क्या आकर। वह राधे बेचारी रो पीट के कभी दर्शन कर पाती थी भगवान के, उस समय राधा को गुंडी कहा करते थे, गंदी औरत मानते थे कि वो बिना समय में भगवान से मिलने यानी एक अहीर से मिलने जाती है। उसके जाने के बाद जो पता चला कि वो तो वास्तव में भगवान थे और वो तो पवित्र आत्मा थी, राधा भगवान की भक्त आत्मा थी। अब कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, और जब उसको गंदी कहा करते थे। तो बरसाना भी नहीं गए, वो धर्मदास बरसाना में नहीं गए, वापस चल पड़ते हैं। आ जाते हैं कहां, अपने बांधोगढ़ में रो रो के रुधन मचा रहे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, जब वापस आ जाते हैं, उसकी धर्मपत्नी ने सोचा, आमनी नाम था उस माई का, उसने सोचा कि भगत जी तो बहुत जल्दी वापस आ गए, ये तो कभी 6 महीने में वापस आने की कहकर गए थे, क्योंकि सभी तीर्थों की यात्रा लगभग 6 महीने में उस समय पूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि एक पैदल चलते थे और वर्ष भर भी लग जाए तो कोई ज्यादा नहीं था। तो उसने सोचा कि भगत जी रो रहे हैं, क्योंकि धर्मदास मथुरा से रोने लगा था, और कहां तक रोता आया, बांधोगढ़ तक। उसकी पत्नी कहती है कि क्या बात होगी भगत जी, क्यों रो रहे हो। अब बोल नहीं सक रहा, बोला नहीं जा रहा उससे, धर्मदास से बोला नहीं जा रहा, इतना रो रहा है कि उसका गला भर आया। अंदर जाके कमरे में, अपने मकान में, महल में जाकर इतना फूट फूट कर रोता है जैसे कोई बहुत प्रिय व्यक्ति मर जावे और फिर उसकी याद में इंसान तड़पता है। आमनी ने सोचा, क्योंकि ऐसा ही रास्ता था, उबड़ खाबड़ हो सके है, सेठ के पैसे निकल गए हो, इसलिए यात्रा त्याग कर आ गया हो। अब रो रहा है कि कहीं सेठानी नाराज ना हो जा, कह दे तू तो तीसरे दिन जाता है, पैसे बर्बाद कर रहा है और मत जा यात्रा पे। उसने सोचा कहीं ये पाप की भागनी मैं ना बन जाऊं और मेरे कारण ये बेचारा रो रहा हो, कहे सेठानी छो गुस्सा हो जा और कहे क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, और क्यों तूने ऐसे ही जेब कटवा दी। वो कहती है सेठ जी रो ना, ये पैसे आपका बहुत दे रखे भगवान ने, पैसे की कमी है क्या आपके, और ले जा पैसे, और ले जा और अपनी पूरी यात्रा करके आ। उसने सोचा ये नादान गलत समझ गई, धर्मदास ने सोचा। फिर बताता है कि आमनी आज मैं वो धन खो चुका हूं जो शायद मुझे जिंदगी में ना मिला है, अगर धन का घाटा हो जाता मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन ये जो घाटा आज मुझे टूटा पड़ा है, भगवान सामने थे और मैंने अपने नखरे से स्वीकार नहीं किया। तो वो कहती है, उसने फिर सारी कहानी बताई, सतलोक की सृष्टि रचना आमनी को सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बताई और काल के प्रत्यक्ष कहानी सुनाई जो कबीर भगवान ने सुनी थी। उस समय आमनी कहती है कि आप सेठ होकर बनिए होकर सौदा चूक गए, क्यों ना पैर पकड़ दिए भगवान के और स्वीकार क्यों ना कर लिया तूने। कहते इससे बात न रोसू कि मैं क्यों डूब गया, ऐसा स्याणा होकर आज तक नहीं इस बात को मैं मार खाया था भक्ति मार्ग में, आज पहली बार चुका हूं। 6 महीने हो जाते हैं द्रवदास ने रो रहा है, खाना छूट गया, पीना छूट गया, पिछली साधना आप छूट गई। जब ये मालूम है कि असंग जन्म हो गया हमने, ये साधना करते करते ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म की अभी तक जीव का जन्म मरण नहीं मिटा। जन्म मरण मिटेगा, कहा था धर्मदास मेरी शरण में आ जा और तेरा जन्म मरण मैं मिटाऊंगा, यू काल नहीं मिटा सकता। काल भगवान ब्रह्म कुछ समय के लिए मिटा सकता है, जैसे ध्रुव और प्रहलाद को महास्वर्ग में भेज दिया, जब महाप्रलय होगी लिखा है गीता में कि सभी स्वर्ग और महास्वर्ग के प्राणी नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो फिर 84 में आ जाएंगे। पूर्ण मुक्त होना है धर्मदास और अर्जुन उस परमात्मा की शरण में चला जातू, तो वो परमात्मा मैं हूं भाई। कबीर साहब कहते हैं आमनी को धर्मदास बता रहा है कि भगवान थे वो खुद पूर्ण ब्रह्म, और मुझ नीच में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने इस अहंकार ने त्याग कर और चरणा में गिर जाऊं। 6 महीने रो रहा है, सुख के बिल्कुल कांटा हो जाता है। आमनी कहती है कि भगत जी आप तो मर जाओगे, अगर मर जाऊं तो बढ़िया, पाप इस पापी का अंत हो जाता, पर अच्छा है मैं रह नहीं सकता। जैसे जिसने जब ज्ञान हो गया, जैसे पानी के बिना ये मछली नहीं रह सकती, ऐसे ही हंसात्मा अपने भगवान के विछोह में वो कभी जीवित नहीं रह सकता। कबीर साहब कहते राम वियोगी ना जीवे, जीवत बोला हो, राम के वियोग में सच्ची जिसका लगन लगी हुआ तो जीवे नहीं, और जीवेगा तो पागल हो जाएगा, उसके विरह में इतना आसक्त हो जाएगा। अब 6 महीने के बाद अपने आप अंतकरण में आमनी के अंदर प्रवेश करके मालिक कहता है कि आमनी के मन में प्रेरणा आती है कि सेठ जी एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी बात बताई थी उन्होंने, कोई कहा हो, इशारा किया हो, मैं कैसे मिलूं, मैं तेरे लिए वही साधन करने को तैयार हूं कि कहा था। क्या कहा था, आमनी थोड़ी कंजूस थी, वह खर्चे जब धर्म पर कुछ पैसे लगाता था तो वह टांग अड़ाया करती है कादी वह, तो उसने सोचा ही वो धर्म करूं, मनमाने 10 दिन 5 दिन 3 दिन और लाखों आदमी आ जा, भाई लाखों का खर्चा भी होगा। भगवान कह तो रहे थे कि भाई जहां पर परमात्मा की नाम पर कोई अखंड भंडारा होता है वहां मैं अवश्य आता हूं, किसी भी रूप में हूं। तूने बोला आमनी मैंने तेरे से नहीं बताना चाहा, पर बता दूं आज। भगवान ने कहा था कि अगर कोई तू ऐसा धर्म यज्ञ करेगा, यानी भंडारा करेगा, परमात्मा के निमंत संतों को भक्तों को भोजन खिलाएगा तो मैं अवश्य आऊंगा जहां पर ईश्वरीय चर्चा होगी। तो वो कहती है कि आप मर गए, मैं इस धन का क्या करूंगी सेठ जी, जितना पैसा चाहे थे सारे न लुटा दे, अपनी शांति पातू। उसी दिन से अगले दिन 2-4 दिन के बाद भंडारे के सारे संदेशा भिजवा दिया और भंडारा शुरू हो गया। 3 दिन, तीसरा दिन आ जाता है और अंतिम दिन भंडारे का अंतिम पंगत जीम रही है और धर्मदास कहता है भगवान या तो आज दर्शन दे दियो, ना तेरा दास आज के बाद नहीं है, आत्महत्या करूंगा, मेरे को जिया नहीं जागा तेरे वियोग में। इतना कह के जब आख्या में रो रहा है और संतों को विदा भी कर रहा है, भोजन खिला रहा है, इतने में दृष्टि जाती है कि सामने वही जिंदे के रूप में वो परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठा है, छोड़कर उनको भोजन खिलाना और चरणा में गिर कर बहुत बुरी तरह रो है। नो देखे जैसे माँ बच्चे ने छोटे से न छोड़कर खेत में चली जा और श्याम ना आवे और उसका नहीं देखकर रोआ, क्यों पानी भरा है भगवान अब मत छोड़ जाना, अकने धर्मदास अपना नहीं छोड़ूंगा मैं, इनको विदा कर मैं तेरे लिए आई। उनको विदा करके संतों को घर ले आता है कबीर भगवान को। आमनी को कहता भगवान आ गए, ये मेरे परमात्मा है, आज दोनों एक एक पैर पकड़कर रोते हैं, दोनों एक एक पैर पकड़कर रोते हैं और कहते हैं, बस आमनी कहती है महाराज जी आपके भगत के साथ ऐसा नहीं करना था आपने, ये तो अगर आप आज आप नहीं आते तो ये समाप्त था, तेरा भगत नहीं था, तेरा दास नहीं था आज के बाद। हे महाराज जी आप तो दयालु हो, काल पहले हमने दुखी कर रहा क्योंकि रोज कथा सुनाया करता धर्मदास आमनी को कि काल भगवान है जिसके अंतर्गत हम बैठे हैं, ये हमें पीड़ा पर पीड़ा देता है। तो वहां कहती है कि काल तो हमें दुखी कर ही रहा था मालिक, आप दयालु मिले थे, आपने भी परेशान आपका सेवक कर दिया कि नहीं आमनी ये दुखी नहीं करा, इसके अंतःकरण का खोट काट दिया, ये वकील बन रहा था काल का, इसका अंतःकरण साफ हो गया, रो रो के एक वियोग की अग्नि में इसका सारा पाप इसका संशय इसके अंदर जो अकड़ थी वह खत्म होगी और नरम होए बिना बीज भक्ति रूपी जीव का प्रफुल्लित नहीं होता, इसलिए मैं देर ताया सुन और ऐसी बात नहीं। जब उनको सत कथा सुनाई तब क्या कहते हैं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भक्त मर्ज करूं, ज्ञान सुना दे ओ मेरा कल्याण भक्त मैं इतनी कहके साहेब कबीर अंत ध्यान होया जी, इतनी कहके साहेब कबीर अंतर ध्यान होया, अपनी गलती जान धर्म दस फूट फूट के रोया जी, अपनी गलती जान धर्म दस फूट फूट के रोया, भूल में जीवन खोया जी अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया ना तीर्थ नाने को, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाहन तीर्थ नाने को, वापिस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, वापिस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, ए बंदी छोड़ तेरे पाने को अब खोदो अपनी जान भक्त मैं अर्ज कर, न सुना दे विधि बता दे वो मेरा कल्याण भक्त, रो रो रुदन मचावन लाग्या एक धर्म ये गरचाई जी, रो रो रुदन मचावन लाग्या एक धर्म ये गरचाई जी, दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी, दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी, राम पाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे जी बता दे हो मेरा कल्याण भक्त, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त। सत साहिब अब मैं जो आपको बता रहा था वो श्लोक नंबर गलती से बताया गया आपको 16 का 6 नहीं, वो अध्याय नंबर 6 का 16 है जिसमें लिखा है कि बिल्कुल ना खाने वाले की या घना खाने वाले की भी मुक्त यानी साधना सफल नहीं होती अर्जुन। अब मैं वो पढ़ कभी सुना दूंगा अपने अध्याय नंबर 6 का 16। हे अर्जुन, यह योग साधना न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले की। ये 6 का 16 भाई, इसमें व्रत कति मना कर रखा भगवान ने कि हे अर्जुन, न तो योग साधना बहुत खाने वाले की, दड़ी पक्का खा जा और फिर अंगड़ाई टूटे जा जमाई आए जा, कहते ऐसे भी भक्ति नहीं बनेगी। या कति नहीं खावे तो उसका वो साधन नहीं बना, उसका ध्यान भूख मरे आकर है, या स्वाभाविक बात उसे बिल्कुल ना खाने वाले का तथा न बहुत सोने वाले का और न गणा जागण वाले का। तो लोग दिखावा ड्रामा करो दिन रात जागे, कहते वो भी भक्ति नहीं करे, ड्रामे करता है, स्वाभाविक नींद ले हुए आंख खुल जा तो भोजन करने लग जा, फिर लटका जा अपना सो जा, यानी ज्यादा भी नहीं सोए और वे कति नरा भी ना जागे, और भक्ति नहीं बने, फिर 2 दिन जाग लेगा, 3रे दिन फिर नींद कति बीमार कर देगी या लुटा देगी। तो अपना स्वाभाविक कर्म भी करे, क्योंकि सारा दिन खेत में काम करने वाला मजदूर या दुकान पर बैठने वाला या कोई अपना ऑफिस में काम करने वाला बिना जाग नहीं सकता गा, अपनी स्वाभाविक नींद ले ले, फिर उठ कर अपना भजन कर ले, लेट कर कर लो यह मंत्र, बैठ कर कर लो, चलते कर लो, बस में कर लो, कोई इसका वो फिक्स समय नहीं है और बात बनेगी मुक्ति पे। तो ये है अध्याय नंबर 6 का 16, वहां गलती से मैंने 16 का 6 बता दिया था, वो ध्यान नहीं रहा। और ये गीता हमारे पास आपको उपलब्ध है गहरी नजर गीता में, इसको आप ले सकते हो, 50 रुपए कीमत है, या साथ में ये स्टाल लगा है और ये 75 रुपए में बनी है, इसलिए हम कम रेट में दे रहे हैं कि यह आम जन साधारण ले सका। अगर ना समझ में आवे तो हमारी वापस दे जाना, पढ़ कभी दे जाना महीने ताई, पर एक बार पढ़ जरूर लेना इसको। बोल सतगुरु देव, कोई नाम लेना चाहता हूं चरण पशीसी गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी राम गुणान। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के दनक पड़ेगी कान। कबीर लोट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, फिर पीछे पछताओगे है प्राण जहांगे छूटी। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तलवर से पत्ता टूट गरे जैसे बोर न लगता डरे। कबीर मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना खुदवायो के काम। राम रटत कोडी भलो चूचू पड़े जो चाम, ये सुंदर दे किसे काम की जा मुख नाही नामी। कबीर जिव्या वो ए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट बगाई ओ बीरा मुख में भलो नाच।
राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा, भक्ति नहीं भगवान।
आज बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वही स्वरूप सतगुरु गरीबदास जी महाराज की एक परम कृपा, पवित्र नगरी जोधपुर के ऊपर हुई है कि यहां पर परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान चल रहा है। जैसा कि कल से सतगुरु की परमात्मा की प्यारी आत्माएं सुन रही हैं कि परमात्मा किसे कहते हैं, मनुष्य शरीर इस जीव को किस लिए मिला था और वो कुल मालिक कौन है। हमारा इस 5 दिन के अंदर सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य है, भक्त आत्माओं को सच्चाई का ज्ञान करवाना। वैसे तो सत्संग की कमी नहीं है, आज के दिन बहुत महापुरुष अपने अपने हिसाब से भक्त आत्माओं को परमात्मा की जानकारी बहुत दे रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब की जो महिमा है, सतगुरु गरीबदास जी ने जो अपने आंखों देखा हाल, उस सतलोक में खुद स्वयं जाकर सतगुरु कबीर भगवान के साथ और फिर उसकी जानकारी अपने ग्रंथ साहिब के माध्यम तक हमें मिली, फिर उनके आधार पर हमने अपनी क्रिया को सुचारू किया और जो संतों ने, सतगुरु भगवान ने, कबीर साहब ने जो भी कुछ लिखा था वो ज्यों का त्यों सत्य मिला। उसके बाद साहिब ने इस दास की ड्यूटी लगाई कि सच्चाई का सारे समाज में प्रचार किया जाए। सच्चाई अवश्य एक बार कड़वी लगती है लेकिन यह मीठी हो जाती है। जब हम कबीर भगवान, कबीर साहेब को भगवान बताते हैं, साहेब वैसे परमात्मा का ही प्रतिबोधक शब्द है। संस्कृत में इसे पुरुष कहते हैं, हिंदी में कई पर्यायवाची शब्द हैं इनके, जैसे परमेश्वर, ईश, भगवान, राम, प्रभु। उर्दू में भी अल्लाह, खुदा, पंजाबी में रब, अंग्रेजी में गॉड, और साहेब शब्द भी ये फारसी का है। सत साहेब, सत माने सच्चा अविनाशी, साहेब माने परमात्मा यानी भगवान। जब हम कबीर साहेब को, क्योंकि हम उस परम पिता की महिमा से पूर्ण परिचित हो चुके हैं, इसलिए हमारे मुख से केवल कबीर शब्द नहीं निकल सकता, हम कबीर साहेब ही कहेंगे, क्योंकि वो भगवान ही है, वो परम पिता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। हो सकता है संगत के अंदर कुछ ऐसे भी भक्तात्मा होंगे जो कबीर पंथी नहीं होंगे, कबीर साहब को नहीं मानते होंगे, उनके मन में ये धारणा आ सकती है कि ये महाराज जी कबीर पंथी है, इसलिए ही कबीर साहेब को भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रथम दिन बताया था, मैं कबीर पंथी नहीं था, मैं अनुमान पंथी था, हनुमान जी का तगड़ा पुजारी था, हनुमान चालीसा प्रतिदिन 7 बार किया करता था, गीता को मैं प्रतिदिन पढ़ा करता था, यानी जितना पढ़ सकता हूं जेब में रखा करता, जन्माष्टमी का व्रत ठीक है, जितनी भगवान कृष्ण की शक्ति और महिमा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो तीन लोक के परमात्मा है और तीन लोक के परमात्मा में जितनी शक्ति होती है वो भगवान कृष्ण की शायद पूरी नहीं गाई जा सकती और न ही गा सकी हो, इतने वो शक्तिशाली हैं। लेकिन हैं तीन लोक के और 16 कला के और 4 भुजा के। यहां ये बात ध्यान रखने योग्य होगी कि कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, श्री रामचंद्र जी भी भगवान विष्णु ही अवतार हैं। भगवान विष्णु तीन लोक के एक मंत्री हैं, वजीर हैं, मंत्री साहब हैं और उनका महकमा है पालन करना यानी स्थिति, कर्म के आधार पर हर जीव को रोजी रोटी देना, और ये भगवान विष्णु की कार्य प्रणाली में आता है, उसकी पावर्स के अंदर है। भगवान जितने हैं उनमें गुण तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि भगवान क्या ज्यादा हैं, क्या परमात्मा ज्यादा हैं? परमात्मा बहुत हैं, लेकिन उनमें तीन मुख्य हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष परमात्मा में नहीं आते, ये तो बहुत निम्न स्तर की शक्ति है, बहुत छोटी। अब यहां भी मन में एकदम खटका सा लगता होगा, जो क्योंकि मैंने भी जब ये ज्ञान सुना था ऐसा लगा था जैसे नीम खा लिया, ये क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण को भी और निम्न स्तर बता रहे हैं। मुझे भी लगा था शायद ये कबीर पंथी बावड़े हैं, अपने भगवान की महिमा ही गाने के लिए सबको छोटा बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं पाया फिर, क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही होती है भले ही उसका ज्ञान हमें ना हो। हम सुनते थे जो बचपन से ही कि तीन भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है, शिव जी संहार करता है, और बहुत प्रसन्न हुआ करते, वाह वाह बहुत अच्छे भगवान हैं। अब कबीर साहब के ज्ञान के चानने में जब हमने सोचा कि ये क्यों बना रहे हैं और क्यों मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, जैसा कि मैंने सुबह बताया था, सृष्टि रचना में के कल बताया था, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो हैं ये ज्योत निरंजन है, ज्योति निरंजन है, इनको काल भी कहते हैं। गीता में वो स्वयं काल भी अपने आप को कहता है, भगवान कृष्ण के अंदर वो परम शक्ति बोल रही है, वो काल, कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे। महाभारत में जब अर्जुन ने पूछा था कि भगवान युद्ध के बाद आप वो गीता एक बार फिर सुना दो मुझे, भगवान ने कहा कि मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब ज्यों का त्यों मैं नहीं बता पाऊंगा। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान कृष्ण ने वो गीता नहीं कहा। वो परमात्मा साथ में गीता में कहता है कि मैं कभी आकार में नहीं आता, और ये मूर्ख लोग मुझे आकार में आया हुआ मान रहे हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो वो शक्ति हूं, मैं कभी आकार में नहीं आता और मेरी लीला अलौकिक है, मेरा प्रगट होना अलौकिक है। अलौकिक का तात्पर्य सामने नहीं आऊंगा पर खेल सारे मैं ही करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता श्री ज्योत निरंजन यानी काल हैं, ये महाविष्णु भी हैं, ये ब्रह्म लोक में रहते हैं, महास्वर्ग में, और यही महा शिव का रूप बना लेते हैं, और यही काल महाब्रह्मा का रूप बनाकर और वहां ब्रह्म लोक में तीन स्थानों पर न्यारे न्यारे स्थानों पर रहता है, और अपनी पत्नी शेरावाली प्रकृति यानी दुर्गा इसके भी तीन रूप बना लेता है, इनसे तीन पुत्र उत्पन्न करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनको फिर अपने यहां तीन लोक का राज्य दे देता है। क्योंकि काल निरंजन को
100,000 जीव प्रतिदिन आहार करने होते हैं, ये रोज खाता है। जो गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और ये मेरा असली रूप है जो तुझे दिखाया, जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा का कलेजा हिल गया और आम व्यक्ति उस भगवान ते के दर्शन ते मर जावे, इतनी बूंदी सकल विकराल रूप, ये भगवान का स्वरूप नहीं होता। भगवान का स्वरूप होता जिसको देखन मात्र ते आत्मा इतनी सुखी हो जा अग जैसे बार बार देखता ही रहू, और जिसके देखते डर लागे वो भगवान ही, वो काल ही है। ऐसे विष्णु प्राण में लिखा है कि विष्णु का एक रूप तो भगवान है, पुरुष है, उसका परम रूप यानी असली वास्तविक रूप उसका काल है। जैसा दिन में भी मैंने परिभाषा बताई थी, अब ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अब मैं आपको परमात्मा और ये शेरा वाली जो है, अष्टंगी भी कहते हैं इसको, प्रकृति देवी भी कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। देखो भक्तजनों, हमारा समाज रूढ़िवादी बन गए। हिंदू अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, मुसलमान भाई अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि साधना तो एक ही है, एक ही परमात्मा है, अल्लाह कोई न्यारा नहीं और राम कोई दूसरा नहीं, एक ही शक्ति के भाषा भिन्न नाम है। हमने ये जो शास्त्र आज हिंदुओं के नाम लिख दिए कि हिंदुओं के शास्त्र हैं, ये हिंदुओं के नहीं, जब ना मुसलमान थे, ना हिंदू थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ये सभी पुराण, ये वेद, गीता जी, महाभारत, सुधा सागर, ये उस समय श्री वेद व्यास जी द्वारा दोबारा रचित किए गए थे एज इट इज, जो के तो, और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। तो उनको किसी ने पढ़ा तो, क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान बिना वो उनको ज्ञान नहीं हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से हुई। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु से शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों उत्पन्न हुए। अब ये बात उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि कबीर भगवान ने जो मार्ग बताया, जो सच्चाई बताई, वो समाज ने स्वीकार नहीं करी, उसके बिना ये शास्त्र सुचारू नहीं बन पाए। कोई किसी से पूछो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता माता कौन है, कोई नहीं बता पाओगा। आपने जो भगवान राम और कृष्ण और शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव के पुजारी हैं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। शास्त्र के पढ़ने वाले, संस्कृत के जानने वाले थे, शास्त्र सभी शास्त्र संस्कृत में थे, आम समाज संस्कृत नहीं जाने था। उन्होंने जो बात नहीं समझ में आई उसको छोड़ दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर हैं, अमर हैं, ये अजन में हैं, ये मरते को ना। और गीता में बतावे कि ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ये नाशवान है। खुद ब्रह्म अपने आप को कहता है मैं भी मरूंगा भाई, अर्थात तेरे मेरे अर्जुन गुणजनों बोलिए। इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म भी मरता है, पर उसका समय ब्रह्मा विष्णु महेश से करोड़ गुना ज्यादा है, फिर भी अंत होता है। गीता के 15वें अध्याय का 16-17-18 श्लोक बताता है कि दो भगवान, एक नाशवान एक अविनाशी। नाशवान ये क्षर भगवान ब्रह्म है, अविनाशी अक्षर पुरुष को कहा है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो इनसे भी न्यारा है, इन दोनों से भी भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म तो नाशवान है ही है, इसमें कोई शक नहीं, और पारब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, ये बहुत समय के बाद तब मरेगा, इसलिए इसको भी अविनाशी की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि इसका जो अंत होगा अरबों खरबों कल्पों का बहुत बीत जाएंगे, जब ये सारे ब्रह्मांड नाश में आवेंगे, सात संख ब्रह्मांड, क्योंकि अक्षर पुरुष सात ब्रह्मांड का, पारब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, सात संख ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है। निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है। अल्लाह है, खुदा है, गॉड है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल तीन विभागीय मंत्री हैं, ये तीन लोग के प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। और कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के प्रभु हैं, असंख्य ओवरऑल कंट्रोलर। उसको सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष ये गीता में लिखा है। परम अक्षर पुरुष वो सत्यलोक में रहता है। गीता में लिखा है कि वो शाश्वत स्थान पर ईश्वर रहता है, वहां जाने के बाद ये जीव फिर जन्म मरण में नहीं आता। शाश्वत स्थानम का मतलब है अविनाशी स्थान, सत स्थान, सतलोक। और मैंने बताया था यजुर्वेद के पांचवें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा जिसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, सभी ग्रहों ब्रह्मांडों का रचने वाला, वो सतलोक में रहता, वही बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, वही सतपुरुष। कबीर साहब कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं कि मैं इस काल के जाल के जीव को छुटवा कर सतलोक ले जाता हूं। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल चार भुजा के भगवान और 16 कला सहित, इनके पिताश्री 1000 कला के, 1000 भुजा के, और इनसे ऊपर पार ब्रह्म है, सबसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म यानी कुल मालिक जो है वो सतपुरुष है। वो असंख्य भुजा का, असंख्य जिसको गिनती नहीं कर सकते, असंख्य कला का, असंख्य कला बिना अनकाउंटेबल यानी उनकी गिनती नहीं कर सकती, वो इतने पावरफुल हैं। अब आप विचार कीजिए, एक तो 40 वाट का, एक तो 4 हॉर्सपावर की मोटर, 1000 हॉर्सपावर की, और एक थर्मल प्लांट, आप हिसाब ले लेना। फिर वो 4 हॉर्सपावर की तो ब्रह्मा विष्णु महेश, 8 हॉर्सपावर की समझ लो इनकी माता, और 1000 हॉर्सपावर का इनके पिताश्री। लेकिन ये कबीर भगवान समझ लो थर्मल प्लांट जहां से बिजली बनती है, जिसकी कोई अंत कोई ना। अब ये बात आप शास्त्र पढ़ोगे जब बात बनेगी। सभी शास्त्रों का समावेश हमने एक किताब बनाई है, गहरी नजर गीता में। मैंने पुस्तक पहले 2 पुस्तक इस दास ने बनाई, जिसमें यथार्थ भक्ति संदेश प्रथम भाग और द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में हमने काफी गीता की जानकारी देने की चेष्टा की। उसमें कुछ एक जो रूढ़िवादी भक्तात्मा थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे महाराज जी का जो अच्छी लगी ना वो तो इसमें दे दी, और जो सच्चाई थी गीता में वह छुपा दी। तो इस दास के ऊपर कृपा हुई दाता की कि क्यों ना इस ऐसे अनमोल शास्त्र को एक बार दोबारा अनुवाद कर दिया जावे, क्योंकि संस्कृत फेरबदल नहीं हो सकती। जो भगवान ने अपने मुंह से बोल रखी है उसको कोई नहीं मिटा सकता, वो यूं की नो रहेगी। शब्दार्थ गलत करते हैं वो मूर्ख लोग हैं, भावार्थ में वो चेंज कर सकते हैं जिसकी जितनी बुद्धि काम करती है। तो इस दास ने ये सारी आंशिक लेख सभी शास्त्रों के थोड़े थोड़े जो इसमें आवश्यक थे वो इसमें दे रखे हैं। चाहे शास्त्र खरीदना चाहे मत खरीदना, उसको सत्य मानकर पढ़ लेना, बिल्कुल 100% सत्य उसमें एज इट इज कॉपी है, जिससे आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि इन शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और उसके आधार पर फिर जब गीता जी को देखा, गीता जी में 90% महिमा उस परमात्मा की गाई है। अर्जुन पूछे भगवान वो ब्रह्म कौन है, उस ब्रह्म की शरण में आप कहते हैं जाइए, वो ब्रह्म कौन है? तो भगवान कहते हैं वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म यानी वो पूर्ण परमात्मा है भाई। उसकी शरण में जाने के बाद फिर जन्म मरण नहीं होता, और कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। स्वयं निरंजन कहता है गीता में लिखा कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण हूं, और मेरा भी परम धाम वही सतलोक है, यानी मैं भी वहीं से आया हूं, ऐसा गीता में लिखा है। आप पढ़कर देखियो, क्योंकि आम समाज ने संतों के मुख से सुनी ही बात को ही मान रखा है। जैसे देवी भागवत में लिखा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मां सिरा वाली और किसन बेरानी, किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब क्या वो झूठा शास्त्र था? नहीं था, लेकिन आपने ज्ञान नहीं इसलिए आपको स्वीकार नहीं। अब शास्त्र पढ़ोगे तो अपने आप मन स्वीकार करेगा और गुंजाइश नहीं रहेगी कि डगमगाने की। अब मैं आपको क्या बताना चाहूं कि परमात्मा किसे कहते हैं। परमात्मा एक श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं, उत्तम आत्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक में सबसे उत्तम आत्मा है, क्योंकि परमात्मा को ही इतनी उत्तम ड्यूटी दी जाती है। वैसे तो परमात्मा जैसे कोई लूट खसोट करे, चोरी करे, दूसरों की आत्मा दुखावे, मांस खावे, शराब पीवे, अफीम खावे, उससे परमात्मा तो वो है जो इन विकारों से दूर है, किसी की चोरी चप्पा करे नहीं, चाहे भूखा सो जावे, उससे तो परम वो है, यानी श्रेष्ठ वो है। उनसे श्रेष्ठ वो है जो सत्संग में आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये भी परमात्मा है। परमात्मा से डरते हैं, दया भाव हृदय में रहती है, तो ये परमात्मा उनसे परम है, श्रेष्ठ है। इनसे श्रेष्ठ वो देव पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति करने की कोशिश की और भक्ति श्रेष्ठ मार्ग ना मिलने से वो परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा देवता की पदवी पाए। इनसे भी परमात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा तीनों देव दयालु हमेशा। ये बहुत दयालु हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी, इनका कर्तव्य इनके परम पिता ने ऐसी दे दी जिसमें इनको निर्दयी भी बनना पड़ता है। जैसे भगवान शिव की ड्यूटी ला रखी है संहार करने की, जिसका जब समय आओगा तो भगवान शिव ने उसको खत्म करना होगा। दयालु होते हुए अपने कर्तव्य प्रयाण इन्होंने ये भी अनर्थ करना ही पड़ेगा। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये दयालु नहीं है, लेकिन इनकी ड्यूटी ऐसी है। अब जैसे कितना ही अच्छा जर्नल हो मिलिट्री का, उसको आदेश होगा गवर्नमेंट का कि आपने युद्ध करना है, वो तुरंत तैयार हो जाएगा और उसने वो लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उस पोस्ट पर है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बहुत पुण्य आत्मा है। एक बार भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी भर्गु ऋषि ने, और इन्होंने कहा था कि ऋषि आपके कोई चोट तो नहीं आई, यानी दयालुता की कलम तोड़ उदाहरण है। ऐसे भगवान शिव ने इतने दयालु हैं कि इनको जरा सा कोई प्रसन्न कर ले, इनकी थोड़ी सी साधना कर ले, खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनमें नम्रता विनम्रता बहुत ज्यादा है, और जिसके कारण ये कई बार धोखा भी खा जाते हैं, क्योंकि पाप आत्मा इस संसार में बराबर चलती हैं। ये तीन लोक के परमात्मा हैं, इनसे परम ये ज्योत निरंजन है। इनसे परमात्मा यानी इससे भी ज्यादा दयालु है ये, लेकिन इसको श्राप लग गया, ये श्रापवश मजबूर हो गया, इसने 100,000 जीव रोज खाने पड़ते हैं। एक राजा बताते हैं बहुत नेक था, मुसलमान था, और वो मांस नहीं खाता था, इतना नेक, ना किसी को तंग करता था, और अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था। एक बार उसका बीमारी होगी, पेट में दर्द हो गया, उसने क्या किया कि सभी डॉक्टर वैद्य बुलाए, सभी दवाई देकर फेल हो गए। एक वैद्य ने बताया कि आपने एक बकरे का कलेजा प्रतिदिन खाना पड़ेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। अब वह मजबूरी होगी उसकी, एक बकरे का कलेजा फिर वो रोज खाने लग गया, उसको राहत मिल गई, यानी पाप न्यो बढ़े। अब वो चाहता नहीं था और फिर भी मजबूरी में दयालु होते हुए अपनी जान रक्षा की खातिर उसने खाना पड़ गया। फिर उसको एक संत टकरा जाता है, एक कबीर साहेब का संत, गरीबदास जी की परंपरा में। तो वो क्या है, एक नौका की इंतजार में वो संत बैठे थे। वहां पर क्या होता है कि वो नौका में बैठ चुके थे, इतने में 5-7 बकरे लेकर राजा के सैनिक आ जाते हैं, और उस नाविक को मालूम था कि ये राजा के सैनिक हैं। नाविक को उन्होंने कहा कि हमें जल्दी पार करो, जल्दी जाना है, तो उस नाविक ने उस संत को उतार दिया कि आप नीचे उतरो। ये राजा के सैनिक हैं, इनको परले पार करके आना है। तो संत ने कहा कि हम भी बैठे चले जाते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो उन सिपाहियों ने कहा कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, महात्मा है इसको। जब वो दरिया से जा रहे हैं, वो पूछते हैं भी कहां ले जा रहे हैं उन बकरों को, तुम राजा के सैनिक बताते हो, तुम बकरियां का क्या करोगे भाई। कहते हैं राजा को एक बीमारी लगी हुई है, प्रतिदिन एक बकरे का रोज सीना खाता है। उसने कहा कि राजा को कह देना आज के बाद उसको दर्द नहीं होगा, पर बकरे नहीं खावे। सैनिकों ने बताया बहुत नेक आत्मा है, वो मांस भी नहीं खाते थे मुसलमान होते हुए भी, लेकिन अब मजबूरी में उन्होंने मांस खाना पड़ गया। तो संत ने कहा कि हमारे कबीर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और उसने मांस नहीं खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा। और उन सैनिकों ने उनका पता पूछा, सारा पता नोट किया। जब वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं। तब उन्होंने कहा कि भगवान राजन ऐसे ऐसे एक संत मिला था हमें, कहता किस टाइम मिला था कि इसमें ये बात कही, कहता उसके बाद मुझे पीड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस संत को ढूंढा, उसके संतान भी नहीं थी, कबीर साहब की कृपा से साल भीतर उसका लड़का हो गया, और ज्यादा प्रसन्न हुआ। और फिर उन्होंने एक बाग और एक मंदिर, एक आश्रम बनाया उस संत के नाम पे, उसका नाम रामनगर रखा। तो यहां हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा किसे कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। भगवान ज्योत निरंजन ये भी उस परम पिता परमात्मा का ही पुत्र है, लेकिन इसने अपनी थोड़ी सी नादानी की गलती के कारण ये श्राप लग गया, यानी बीमारी लग गई इसके, और ये इसका परिणाम हमें भी साथ भोगना पड़ रहा है। 1,00,000 जीवों का ये काल रोज आहार करता है, इसलिए ये गुप्त रहता है, किसी के सामने प्रकट नहीं आता होता। स्वर्ग में नहीं रहता, ये स्वर्ग में इस रूप में नहीं रहता जिसका वास्तविक रूप है। ये जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर ले तो वो ओरिजिनल रूप छुप जाता है उसका, चाहे कितना विकराल बुंडा हो। ऐसे ये तीन रूपों में महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में वहां रहता है, चार भुजा में, लेकिन अपनी हजार भुजा वाले रूप को वहां गुप्त करके रहता है। एक सिद्धि होती है जो बहुत शरीर बना सकता है, जैसा चाहे कुछ समय के लिए बना सकता है। वहां भी तीनों रूप में ये हर समय दर्शन नहीं देता सब संतों को, अपना अलग स्थान रखता है, जब चाहे वहां से खत्म और गुप्त हो जाता है, किसी को अंदर आने का आदेश नहीं है। और अपने लोक में जाकर अपने विकराल रूप में बैठकर 1,00,000 जीवों का आहार करता है। वहां पर तपतशिला बनी हुई है, एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप सवते गर्म रहती है, जो निरंजन लोक में है। वहां पर ना ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु जा सके, ना शिव जा सके, ना कोई साधक जा सकता। उसने ऐसा बीच में इतना भयंकर एक शक्ति छोड़ रखी है, उसको केवल कबीर साहब के सार नाम सतनाम का उपासक संत और कबीर साहब के यानी सहारे से उस नगरी को पार करके ही जाना पड़ता है। ये काल भगवान के सिर पर पैर रख के ये कबीर हंस वहां से पार होते हैं, क्योंकि काल भगवान ने 21वें ब्रह्मांड के अंतिम लोक में, जो कि सतलोक जाने का रास्ता है, वहां पर अपने सिर के बल पे बंद कर रखा है कि कोई इधर से वापस ना चला जा। जब ये कबीर साहब का उपासक सतनाम और सारनाम का उपासक संत जाता है भक्त, तो उस हंस के सामने उसका अपने आप सिर झुक जाता है, वो रास्ता खाली हो जाता है, और उसके सिर पे पैर रख के काल के ये कबीर हंस अपने सतलोक चला जाता है। अब आपको ज्ञान हुआ कि परमात्मा कितने हैं। अब यहां पर सभी संत कहते हैं कुल का मालिक एक है, और गीता में लिखा है कि अर्जुन ये संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। कितना एक ही दोए में सारी सृष्टि का वर्णन दे दिया भगवान कबीर साहब ने। गीता में भी ऐसा ही लिखा अर्जुन, ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है और इसकी जड़ ऊपर को है, यानी मूल जड़ कहां है इसकी, सतलोक है। और कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष माने परब्रह्म, ये तो समझो जमीन से बाहर दिखने वाला पेड़ है, मोटा तना है और इसके एक मोटी डार लगी है, मोटी डार उसको निरंजन जानो, और उसके फिर तीन शाखा हो निरंजन के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, तीनों देवता और टहनी और ये देवता और ये पत्ते रूप में संसार। लेकिन जड़ कौन है, मूल कौन है, वो कबीर भगवान सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और जड़ों से ही सारी शक्ति उस पेड़ को प्राप्त है। ऐसा ही गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा तो अविनाशी, भगवान तो दूसरा ही है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका पालन पोषण और स्थिति सब कुछ वही करता है। अब जब हमने इस बात की सही जानकारी होगी, फिर गीता जी जैसे अनमोल शास्त्र को आप पढ़ोगे, इतना आनंद आएगा, हे परमात्मा ओए होए, इतनी सच्चाई जो गीता में लिखी है और कबीर साहब से बिल्कुल मिलती जुलती है। गीता में सिर्फ कमी क्या रही कि उसमें उस परमात्मा के पाने का मार्ग नहीं है, केवल ब्रह्म के पाने का मार्ग ओम मंत्र है और यज्ञ हवन है स्वर्ग महास्वर्ग की जाने की, पूर्ण परमात्मा के पाने की यानी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। इस करके ऋषियों ने हजारों वर्षों वेदों और गीता के आधार पर साधनाएं की, लेकिन वो बेचारे फिर भी पार नहीं हो पाए। रहे निरंजन लोक में, महास्वर्ग में चले गए और करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग महास्वर्ग में भी रहे, लेकिन फिर महाप्रलय जब होती है ये सारे ही समाप्त हो जाते हैं और फिर सृष्टि रची जाती है। ये 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड की, ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर न्यारी न्यारी व्यवस्था हर समय पर होती रहती है। और सतलोक कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको सत्यलोक कहते हैं, उसको अमर लोक कहते हैं, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। बेगम जहां कोई चिंता ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, उसको बेगमपुर भी कहते हैं, उसको अजर लोक भी कहते हैं। कबीर साहब के यानी पूर्ण परमात्मा के अन्य नाम भी हैं, जैसे अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख। सतपुरख, सत माने सच्चा, पुरख माने भगवान, सत साहेब, अकाल मूर्त जिसका काल ना हो वो परमात्मा की तस्वीर यानी वो सतपुरुष, और शब्द स्वरूपी राम यानी शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी राम यानी शब्द खंड नहीं होता, इसका नाश नहीं होता शब्द का, यानी वो परमात्मा शब्द स्वरूपी है, वो कबीर भगवान, उसका कभी नष्ट नहीं होता, वो पूर्ण परमात्मा है। अब मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि यदि हम कबीर साहब को परमात्मा बताते हैं, जो भक्तात्मा सतगुरु की महिमा से परिचित हैं वो तो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जैसे राम और कृष्ण भगवान की महिमा बहुत ही ज्यादा हिंदू समाज में प्रचारित की गई, जब हम पैदा हुए उसी समय से हमने भगवान राम और कृष्ण की महिमा आम बच्चे बच्चे तक, आम संत तक, पुस्तकों के माध्यम से, धार्मिक पुस्तकों के माध्यम तक हमने खूब सुनी और हमें स्वतः स्वीकार्य हो गया कि ये बहुत ही अच्छी भगवान है और ये परमात्मा है, क्योंकि हमने पूर्ण ज्ञान नहीं था, उनको स्वतः स्वीकार कर लिया कि ये भगवान है, क्योंकि हमने महिमा गणी सुनी, आम व्यक्ति से सुनी।